अब आगे। वंशिका ने 25 से 30 मिनट बाद एक ढाबे पर बैठकर खाना खाना शुरू किया। उसके बाद उसे अरमान सिंघानिया की गाड़ियों के वहां से पास होने का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे सिर्फ अरमान का पीछा करना था। ध्रुव की आंखों के सामने बार बार वंशिका का चेहरा आ रहा था। वंशिका का मुस्कुराना और वंशिका का उसकी बातें सुनना, उसका उसे तरह से बोलना, ये सारी बातें ध्रुव के दिमाग से निकल नहीं रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था। आहान, जो ध्रुव से चिढ़ा हुआ बैठा था, क्योंकि जब से रौनक ने ये कहा था कि वो ध्रुव को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, तब से आहान को ध्रुव से कुछ ज्यादा ही चिढ़ हो रही थी। लेकिन फिलहाल वो ध्रुव से कुछ नहीं कह सकता था। उसने सोच लिया था कि गांव में जाकर ध्रुव से अच्छा खासा झगड़ा करेगा। अब सब लोगों की हालत काफी ज्यादा थकावट भरी हो गई थी और सब लोग ऑलमोस्ट सोने लगे थे। अरमान आस्था को अपनी बाहों में लेकर आराम से वैनिटी वैन में सोया हुआ था। आकाश रश्मि को बाहों में लिए आराम से कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। रौनक को भी नींद आने लगी थी और रौनक का सर बार बार खिड़की पर टकरा रहा था। आहान तुरंत तड़प उठा और तुरंत अपना हाथ वहां आगे रख लिया ताकि रौनक का सर ना टकराए। लेकिन रौनक तुरंत अपनी आंख खोल ली और आहान का हाथ झटक दिया। ऐसा कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन जल्दी ही रौनक एक गहरी नींद में सो गई और खुद ब खुद उसने अपना सर आहान के कंधे पर रख लिया था। आहान मन ही मन में झल्ला कर बोला, अभी केवल हाथ रख दिया था तो किस तरह से इरिटेट हो रही थी, अब देखो खुद ब खुद मेरे कंधे पर सर रखकर आराम से सो रही है, छिपकली कहीं की। तब आस्था मुस्कुराते हुए बोली, अरे अरमान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस टाइम थोड़ी ना हमें वे लोग मिलेंगे। अरे अब तो काफी रात हो चुकी है, इस वक्त सब सो रहे होंगे। हम सुबह सबसे मिलेंगे ना आराम से, क्योंकि गांव में सब लोग 8 से 9 बजे के बाद ही सो जाते हैं, और हमें तो ऑलरेडी 11:30 के अराउंड हो चुके हैं, क्योंकि वे लोग शाम में वहां से निकले थे और 4 से 5 घंटे उन्हें पहुंचने में लगे। तब अरमान ने कुछ नहीं कहा और जल्दी ही नानी माँ के आदेश पर कमलेश जी ने सबको उनके कमरे दिखा दिए थे। वहीं आहान और रौनक का कमरा आमने सामने वाला था। रौनक के साथ राधिका और साथ ही साथ एंजल भी उन लोगों के साथ थीं, क्योंकि नानी माँ ने 3 लड़कियों को एक ही साथ रखने का फैसला किया था। हालांकि एंजल सबको अपना पक्ष क्लियर करना चाहती थी, लेकिन उसे समय नहीं मिल पा रहा था। वहीं अविनाश भी आस्था के गांव में आकर बहुत खुश था। उसे भी सब कुछ बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। एक एक करके अब सभी लोग आराम करने के लिए चले गए थे। तब नानी माँ अदब से बोली, बिटवा, हम आप लोगों के लिए कुछ खाना रेडी करवाते हैं, तब तक आप सब थोड़ी थोड़ी देर आराम कीजिए। ऐसा बोलकर नानी माँ जल्दी ही किचन में जाने लगी, लेकिन अरमान उन्हें रोकते हुए बोला, आप भी तो हमारे साथ सफ़र करके थक कर आई हैं, तो आपको इस तरह से हमारी मेहमान नवाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दादाजी भी अरमान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, हाँ 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 बहन जी, अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हम सब घर के ही लोग हैं, हम मैनेज कर लेंगे। आप बस किचन दिखा दीजिए, हमारे साथ शेफ़ आए हैं, वो खाना बना लेंगे। तब कमलेश जी हैरानी से सब चीज़ को देखने लगे थे और हैरान होकर पूछा, क्या वाकई में आदमी लोग खाना बनाएंगे? क्योंकि गांव था, गांव में ज्यादातर लड़कियां ही खाना बनाती थीं, किसी ने भी कभी आदमी को खाना बनाते हुए नहीं देखा था। अब कमलेश जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन जल्दी ही शेफ किचन में चले गए। हालांकि वहां पर ज्यादा तो सामान मौजूद नहीं था, लेकिन अरमान ऑलरेडी सारा सामान साथ में लेकर आया था, तो इसलिए कुछ देर में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किचन सेट कर दिया था और फटाफट से उन्होंने गर्मागर्म खाना बनाना शुरू कर दिया था। वहीं आस्था सीधा अपने कमरे में अरमान को ले गई थी।